Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare,
Krishna, Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare,
Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Jagannath Mandir ISKCON बेंगलोर में श्रीमद् भगवत गीता के सातवें दिन के सत्संग में आपका स्वागत है। दूसरा अध्याय भगवत गीता का सार है। इस अध्याय को हमने पूरा किया तो गीता पूरी हो गई। गीता समराइज, तो हम अभी गीता की समरी पूरी करते हैं, फिर विस्तार से गीता को करेंगे। तो प्रयास करते हैं कि दूसरा अध्याय आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन का विषाद, श्री कृष्ण को समर्पण, शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश देना, आत्मा और शरीर अलग हैं, आत्मा भगवान का अंश है, शरीर प्रकृति ने दिया है, आत्मा भगवान के भजन में सुख लेता है और शरीर प्रकृति के भोग में सुख लेता है, क्योंकि प्रकृति से पैदा हुआ है। इसलिए इस दुनिया में सब हम हमेशा द्वेधा में रहते हैं। शरीर प्रकृति का है, प्रकृति की तरफ जाता है, आत्मा भगवान का है, भगवान की तरफ जाना चाहता है। इसलिए रसाकसी होती है, वो टगाफवाग होती है, खींचातानी जीवन में रहती है हमेशा। सो भगवान ने आत्मा के अमरता का और फिर शरीर के नाशवंत होने का सिद्धांत स्थापित किया, तो कहीं कोई ज्ञान में केवल स्थित होकर और आत्मा का ही चिंतन करे और शरीर को बिल्कुल भूल जाए अथवा उसका कोई ध्यान न दे, इससे सावधान करने के लिए भगवान ने शरीर के स्वधर्म का अर्जुन को उपदेश किया। कल हमने आपको ये बताया था कि स्वधर्म, स्वयं का धर्म दो प्रकार का होता है, एक शरीर का स्वधर्म जो हर एक का अलग होता है और दूसरा आत्मा का स्वधर्म जो सबका सामान्य होता है। आत्मा का स्वधर्म भगवान की प्रेममयी सेवा या भक्ति है और शरीर का स्वधर्म हर एक के अपने वर्ण आश्रम के अनुसार है। तो भगवान अर्जुन को आठ श्लोकों में शरीर का स्वधर्म बताते हैं, क्षत्रिय के शरीर का स्वधर्म धर्म का युद्ध करना है, इस आधार पे ब्राह्मण के शरीर के धर्म का अपना काम धर्म है, यज्ञ यज्ञ विद्या पढ़ना, विद्या देना, दान देना, दान लेना, जो भी वैश्य गौ कृषि गो रक्षा वाणिज्य वैश्य के धर्म का कर्म, तो हर एक का अपना धर्म है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी का अलग है, गृहस्थ का अलग है, वानप्रस्थ का अलग है, तो हर एक का जो धर्म है शरीर का वो तो पालन करना ही चाहिए, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, जिसका जो स्वधर्म है उसको पालना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब स्वधर्म शरीर का पालन करने के बाद भगवान ने जो आत्मा का स्वधर्म है उसमें उसको बुद्धि योग में स्थित होके शरीर के कर्म को भी करो, शरीर के स्वधर्म का पालन करो बुद्धि योग में स्थित होकर, अथवा इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा के स्वधर्म में स्थित होकर शरीर का स्वधर्म पालन करो। ऐसे शरीर के धर्म को पालन करने में एक ही सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है, कर्म करना बंद नहीं करो, कर्म को सदा करते रहो। बस सिर्फ फल में आसक्ति मत रखो, एक ही सिद्धांत है। बुद्धि योग में स्थित होकर कर्म करना, भक्ति में स्थित होकर कर्म करना, आत्मा के स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करने का एक ही सिद्धांत है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के फल में आसक्ति मत रखो। तो कल हमने महत्वपूर्ण श्लोक कर्मणैव अधिकारस्, उसका अध्ययन किया, फिर समत्व योग उसको समझा, योगिस्तकुं कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धो असिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। फिर हमने दूरेण है अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्य कृपणापलयित्व, ये श्लोक हमने कल किया था। जो बुद्धि देने वाले, बुद्धि योग देने वाले भगवान का शरण लेता है वो ब्राह्मण है, और जो फल के लिए काम करता है वो कृपण। इस श्लोक का सादा अर्थ ये सिंपल। अब आपकी चॉइस है कि कृपण बनना चाहते हो कि ब्राह्मण। प्रभुपाद ने तो संस्था को ब्राह्मण बनाने के लिए स्थापन किया था। फल के लिए काम करने वाला कृपण है और बुद्धि योग देने वाले के लिए काम करने वाला ब्राह्मण है। अब काम बुद्धि योग में स्थित करके करता है उसकी शैली क्या है, आइए ये श्लोक पढ़ते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति हः उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इसमें दो शब्दों को समझ लीजिए। पहले जहाति इह, पहला शब्द है जहाति इह। इह का मतलब इस जीवन में जीते जी। जहां भी इह शब्द आए, इह उसका अर्थ है जीते जी इस जीवन में। इस एक शब्द को लेके हम हमेशा एक ही बात करते हैं, गीता जीने की कला सिखाता है, मरने के बाद वैकुंठ की बात नहीं करता। गीता जीवन काल में कैसे जिया जाए कि कोई बंधन न पड़े, यही शिक्षा गीता की है। और जहाति का अर्थ है त्याग देना, छोड़ देना। जिहाती, जिहाती का मतलब अपने से अलग कर देना, छोड़ देना, गिविंग अप। और दूसरा शब्द है कौशलम। कौशल शब्द निकला है कुशल से, और कुशल शब्द निकला है कुश घास से। कुश घास तलवार की तरह दोनों तरफ से तीखा होता है, मालूम है कुश को, द्रव घास जो होता है उसको अगर हाथ से ऐसे निकालने की कोशिश करें तो हाथ कट जाएगा। कुशल ब्राह्मण केवल 15 दिन साल में उपवास से ऐसे आते हैं, तब वो पूरे साल की पूजा के लिए कुश घास को जड़ में हाथ डालेगा और जड़ से पूरा घास निकालेगा। घास निकलेगा, जड़ नहीं बचेगी, हाथ नहीं कटेगा, उसको कुशल ब्राह्मण कहते हैं। कौशल कम का काम कैसे कुशलता से करो, पीछे कोई फल भी भोगने के लिए नहीं बचे। जड़ निकल आए, फल नहीं बचेंगे, पीछे कुछ भोगना नहीं, और हाथ भी नहीं कटे, और आपके पास पूजा के लिए घास भी मिल जाए। یہ کوشل کا ارتھ ہے. کشل برہمن اس کو مانتے ہیں جو کچھ گھاس کو بغیر ہاتھ کٹے اور جڑ سے نکال دے. تو ارجن بدھی یوگ بدھی یکت ہو, بدھی سے یکت ہو کر, بدھی یوگ میں استھت ہو کر اتوا بدھی یوگ والے کا ہاتھ پکڑ کر. جہاتی جیتے جی تیاگ دو کیا شبھ ابھو سکرت دشکرتے, دونوں ابھو کا مطلب دونوں, سکرت کا مطلب اچھے کرم کا پھل اور دشکرت کا مطلب برے کرم کا پھل. اچھے کا پھل سورگ ہے اس کو بھی چھوڑ دو, برے کا پھل نرک ہے اس کو بھی چھوڑ دو, دونوں کو چھوڑ دو. جہاں تی جیتے جی چھوڑ دو, کیا چھوڑ دیں, شبھ اشبھ کرم کے پھل کو تیاگ دو. یوگا ہے یوجسو, آپ تو لگے رہو اپنے کام میں, یوگا یا یوگ میں استھت ہو کر بھگوان سے جڑ کر, اتوا جیسے کل کہا تھا بھگوان سے پارٹنرشپ کر کے, وہ سلیپنگ پارٹنر آپ ورکنگ پارٹنر. یوگ کرم سو کوشلم, آپ کا کرم پھر کشل ہو جائے گا, نہ اس کا کوئی کبھی پھل بھوگنا پڑے گا, نہ کرم کرتے ہوئے کوئی کشٹ آئے گا, اور انت میں کیا ملے گا اس کے بعد والے شلوک میں وہ بتایا گیا ہے, ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. نہ اچھے کرم کا پھل سورگ ملے گا, نہ برے پھل کا کرم نرک ملے گا, ملے گا سیدھا بھگوان کا دھام. اور بھگوان کے دھام کو کہتے ہیں انامیم, آمیا کہتے ہیں دکھ کو, کشٹ کو, بیماری کو, روگ کو, اور انامیا کہتے ہیں ویکنٹھ کو, بھگوت دھام کو, مکتی کو, دکھوں سے مکت ہونے کو. تو اگر کشلتا سے کرم کرو گے تو کیا ہوگا, کارم جم بدھی یوکتا ہی فلم تیکتوا منیشنا جنم بندھ ونرمکتا پدم گچھنت انامیم. انامیہ پد کو پراپت کرے گا, انامیہ پد کا مطلب ویکنٹھ, دکھ جہاں کوئی آمیا نہیں, دکھ نہیں, تکلیف نہیں, کشٹ نہیں, پریشانی نہیں, بڑھاپا نہیں, بیماری نہیں, جنم نہیں, مرتیو نہیں, وہ انامیہ پد ہے, اس کو پراپت کرے گا. کشلتا سے کرم کرے گا تو انامیہ پد کو پراپت کرے گا. کرم جم بدھی یوکتا ہی پھلم تیکتوا منیشنیہ, منیشنی کون, بدھیمان ویکتی, مننشیل ویکتی, جو بھگوان کے وچنوں کے اوپر وشواس کرتے ہیں. گریٹ اسٹیجز منیشنی ڈیووٹیز, منیشی کا مطلب منن کرنے والا, مننشیل, کس بات کا منن کرتے ہیں, بھگوان کے وچنوں کا منن کرتے ہیں, بھگوان کے شکشاؤں کے انوسار اپنا جیوت بتاتے ہیں. وہ پھل کو تیگ کو, پھل کو تیاگ دیتے ہیں, کس کو, کرم جم, کرم سے جنم لینے والا جو پھل ہے اس کو تیاگ دیتے ہیں. کرم جم بدھی یوکتا ہی, کیوں بھائی چھوڑتے کیوں کرم کے پھل کو, کیونکہ ان کو بھگوان پہلے ہی مل چکا ہے, بدھی یوکتا, وہ بدھی ان کی بھگوان میں استھت ہے. تو جب بھگوان ہی مل گیا ہے تو پھر کرم کے پھل کو کیا کریں گے بھائی, جس کو بھگوان مل جائے اس کو کرم کے پھل کی کیا ضرورت ہے, پھل دینے والا ہی مل جائے تو پھر پھل کی کیا ضرورت ہے بھائی, پھل داتا کون ہے, تو جب پھل داتا ہی مل گیا تو پھر پھل کو کیا کرے گا, اس کو تو پھل داتا مل گیا. بدھی یوکتوں کا مطلب
जो बुद्धि योग देने वाला है उसके साथ हाथ मिलाया हुआ है अथवा उसके साथ जुड़ा हुआ है अथवा उसकी सेवा में लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर होगा तो उसको चिंता गाड़ी में जाने की नहीं है, पहले आगे बैठेगा तब पीछे प्राइम मिनिस्टर बैठेगा, तो उसको उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर रसोई बनाने वाला है प्राइम मिनिस्टर की, तो पहले चख लेता है फिर उसको देता है, तो इसका मतलब फल क्यों मांगेगा जब उसके पास सब कुछ है। फल देने वाला मिल जाए तो फल मांगने की क्या जरूरत है। इसका अर्थ असल में ये है कि फल देने वाला मिल गया, फल देने वाले मिलने, फल देने वाला मिलने का फल क्या है। फल मिलेगा तो क्या होगा, फल को भोगना पड़ेगा, दुख होगा तो भोगना पड़ेगा, सुख होगा तो भी भोगना पड़ेगा। और फल देने वाला मिलेगा तो क्या होगा, जन्म बंध विनुर्मुक्ता, तो फिर जन्म मरण के बंधन से विशेष रूप से मुक्त हो जाओगे, विमुक्ता, विशेष रूप से मुक्त हो जाओगे। विशेष रूप से मुक्त होने का ऐसे मुक्ता क्यों नहीं कहा, विमुक्ता क्यों कहा, भाई मुक्ता भी कह सकते हैं, मुक्त और विमुक्त क्यों कहा। मुक्त तुमको परिश्रम करे करके ज्ञानी को मुक्त अपने आप होना पड़ता है, और जो भगवान के लिए काम करता है उसको भगवान मुक्त करता है, इसलिए विमुक्त है। अपने आप मुक्ति के लिए उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भवामी निचरात पारत मयावेशित चेतता, संसार सागरात भवामी निचरात पारत, ऐसे भक्त को संसार सागर से तुरंत ही मैं चोटी से पकड़ के बाहर निकाल देता हूँ। और जो किसी ने पूछा था चोटी क्यों रखते हैं, बोला भव सागर से डूबते को भगवान चोटी से पकड़ के आपको बाहर निकाल देते। हमने हरिद्वार में, हमको एक पंडित जी ने बताया कि हम लोगों के माता पिता बुजुर्ग मर जाते हैं उनकी अस्थियां तारते हैं, लेकिन लोग आते खुद जब डूबते हैं तो उनको भी हमको बचाना पड़ता है, तो पुरुषों को बचाना मुश्किल है, स्त्री डूबती है तो हम बचाने में आसानी है। हमने बोला ऐसे क्यों, बोला बड़ी लंबी चोटी होती है दूर से पकड़ लेते हैं, चोटी पकड़ के दूर से खड़ी रखते क्यों, डूबने वाला गले में हाथ डालेगा और हमको भी डुबा देगा, चोटी से दूर से पकड़ के उस किनारे पे ले आते हैं। और आदमी की चोटी नहीं होती है तो उसको हाथ भी नहीं डालते हैं, क्योंकि वो तो हमको भी लेके डूबेगा। तो इसलिए चोटी होएगी तो ये एरियल का काम करेगी, ऊपर से सब समाचार आएगा और अंत समय में भगवान इससे पकड़ के भव सागर से पार लगा देंगे। एक आदमी था गांव का, दाढ़ी भी बड़ी थी, गांव से पगड़ी बांधने वाले पुराने जमाने के गांव के लोग थे, बाल भी बड़े थे, घर में पत्नी बीमार थी, बेटा स्कूल नहीं पढ़ता था, अपना धंधा नहीं चलता था। पंडित जी के पास पूछने आया, पंडित जी बहुत बड़ी परेशानी है, हमारे ग्रह देखो, हमारा ग्रह नक्षत्र देखो। पंडित जी ने कहा तुम्हारी पत्नी के ऊपर तो शनि है, उसके लिए शनि देव की पूजा करो, तुम्हारा पिता, तुम्हारे बच्चे का सूर्य खराब है, बुद्धि ठीक नहीं है, उसकी सूर्य की पूजा खराब, और आपका धंधा नहीं चलता है, आप गौदान, आप गौशाला में कुछ दान किया करो। बोलते पंडित जी आपको ये सब पता कैसे लग रहा है। बड़ा गांव का है, इसको क्या बताऊं कि ज्योतिष, उसने अपनी चोटी को खोला, बोला ये एरियल है, ऊपर से सब समाचार आता है। तो ये जो गांव वाला था, इसने पगड़ी ऊपर उतारी, उतारे नीचे रखी, उसकी चोटी 3.5 फुट लंबी थी। बोला बोला मेरा एरियल है, मुझे पता क्यों लगता, नहीं लगता है। पंडित बुद्धिमान था, दाढ़ी से पकड़ से बोला तुम्हारा यहाँ से सब अर्थिंग हो जाता है। इसलिए चोटी रखो लेकिन दाढ़ी नहीं, नहीं तो अर्थिंग हो जाएगी। तो अर्थिंग भी नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए गोपियां महा भक्त है, भगवान की महान भक्त है, चोटियां बड़ी है, दाढ़ी नहीं है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कर्म बंधन विमुक्ता, विमुक्ता की परिभाषा बता रहे थे। विमुक्ता का मतलब भगवान आपको बंधन से मुक्त कराएगा, क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये उसका दायित्व हो जाता है। और ज्ञानी होगा तो अपनी मुक्ति का स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। भक्त छोटे बच्चे की तरह होता है, जिसको माँ अपने आंचल से ढकती है और हर दुख सुख में छाया में बिठाती है, प्रेम से खिलाती है। ज्ञानी बड़े बेटे की तरह होता है, जो पिता से माता से अलग होके स्वतंत्र अपना काम करना चाहता है। तो यहाँ विमुक्ता अर्थ है विनुर्मुक्ता, मुक्त अपने प्रयास से नहीं, भगवत कृपा और करुणा से। भवामी निश्चनात् पार्थ मई आवेश चेत काम का अर्थ है संसार सागर में डूबते को मैं गरुड़ के ऊपर आके पकड़ के बाहर निकाल लेता हूँ। विनुर्मुक्त, मैं उसको मुक्त करता हूँ। वो अपने प्रयास से मुक्त होने के लिए कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ मेरी सेवा करता है और उसकी मुक्ति का भार मेरे ऊपर। नाव में कभी चलना होता है ना, नदी में नाव होती है तो नाव दो तीन मिनट आपको चार कदम पानी में रख के फिर नाव में चढ़ना पड़ेगा, तो कीचड़ में पांव होते हैं तब नाव में चढ़ा जाता है। अपने आप जाओगे तो, लेकिन रुपये के बजाय 5 रुपया नाव वाले को दोगे और बच्चा आपके साथ होगा तो वो उतर के आएगा, बच्चे को गोद में उठाएगा, पांव उसका गीला नहीं होने देगा, सीधा जाके नाव में बिठा देगा। तो विनुर्मुक्ता का मतलब है भगवान आपको संसार की कीचड़ में गंदा होने नहीं देंगे, उठा के नाव में बिठा देंगे और आप नाव में बैठ के भगवान का दर्शन करते रहना और भगवान नाव को चला के पार कर देंगे। इसका अर्थ ये है विनुर्मुक्त का। आपको कुछ नहीं करना, नाव में भी बिठाएंगे, नाव भी चलाएंगे, आप बैठ के दर्शन करते रहना। जीते जी की बात है ना, जिंदा में दर्शन करोगे, मरने के बाद नहीं, जीते जी। तो ये काम कुशल, अगर काम करना आता है, कुशलता से काम कर सकते हो तो फिर कोई फल भोगने के लिए नहीं रहेगा। भगवान आपको अपने धाम में स्वयं हाथ से पकड़ के ले जाएगा, आपको अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब इस श्लोक के पर्पट में श्रील प्रभुपाद ने एक भागवत का श्लोक लिखा है, वो श्लोक बड़ा सुंदर है। समाश्रिता ये पद पल्व पल्वम महत् पदम पुण्य यशो मुरारेह भवं बुधे वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। इस दुनिया में कदम कदम के ऊपर संकट है, दुख है, विपत्ति है, परेशानी है, लेकिन जो मुरारी का पुण्य यश जिसका वेदों में गाया गया है, उस मुरारी के चरणों को, महान चरणों को पकड़ लेता है तो फिर वो चरण कैसे है, संसज्जता यत पाद पल्व पल्वम, वो बहुत बड़ी वो जहाज है। भगवान के चरण कमल जहाज है, उसके चरना नहीं होता है, उनका ध्यान करने से ये संसार सागर एक गाय के बछड़े के खुर में के खड्डे में जितना पानी होता है उतना छोटा हो जाता है। संसार सागर कितना बड़ा है और छोटे गाय के बछड़े के खड्डे के खुर के खड्डे में जितना पानी होता है उसके ऊपर से तो बच्चा भी फलंग जाएगा। तो संसार सागर विनुर्मुक्ता की अर्थ ये प्रभुपाद ने विनुर्मुक्ता शब्द के भाष्य इस श्लोक से किया है कि उसके लिए कोई संकट संसार में नहीं रहेगा, जो पदम पदम के विपत्ति है वो भी नहीं रहेगी, और मुरारी के चरणों की नौका अगर बनाएगा। भागवत में है शंकर जी और ब्रह्मा, नारद और इंद्र श्री कृष्ण के जन्म से पहले देवकी के गर्भ स्थित कृष्ण को प्रार्थना करते कहते हैं, तव पद्व तव पाद पल्व पोते ना, भगवान आपके चरण कमल नौका है, संत इस नौका का सहारा लेके भवसागर पार करते। भगवान के चरण कमल भवसागर पार करने की नौका है, जहाज है, इसके ऊपर चढ़ना नहीं है, इसका ध्यान करना है। आप इसका ध्यान करेंगे और संसार सागर छोटा होने शुरू हो जाएगा और बछड़े के खुर के जितने पानी हो जाएगा और आपको कुछ करना नहीं है, आप कदम उठाओगे तो दूसरे तरफ। तो ये इसकी परिभाषा है। अब आगे पढ़िए। अब भगवान कुछ ऐसी बात कहने जाएंगे जिसमें अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ेगी और प्रश्न पूछेगा। अब दो श्लोक भगवान बोलेंगे, उधर जाके वापस थोड़ा जाइए, व्यवस्था आत्मिका बुद्धि के बाद कौन सा श्लोक आया था, याम इमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति विपश्चिता। वेदों में काम भोग की, स्वर्ग भोग की कामनाओं वालों की बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होती है। तो अब ये दो श्लोक फिर वापस वेदों के वाणी से जो अपने आप को मुक्त करके बुद्धि योग में भगवान की भक्ति करेगा तब अनामयम पद मिलेगा, तब उसका कर्म कुशलता वाला माना जाएगा। तो ये श्लोक है, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति करिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब इसमें यदा और तदा का मतलब है आप करोगे तब होगा, यदा मतलब जब आप मोह कलीलम, कलीलम जंगल को कहते हैं, जैसे जंगल में कोई जाए रास्ता नहीं मिले और भटक जाए वापस लौट भी न पाए। लखनऊ में एक भूल भलैया है, उसमें अंदर जाओगे तो वापस निकल नहीं सकते हो, देखा है किसी ने, कोई गया लखनऊ में उसको कहते ही भूल भलैया है। अगर कोई गाइड नहीं होगा तो सब रास्ते एक जैसे हैं, आप अपने आप बाहर नहीं आ सकते हो। तो वेदों के अगर कर्म कांड में फंस गए तो आप भूल भलाइयों में ऐसे फंस जाओगे वहां से अपने आप बाहर नहीं निकल सकते, वो कलीलम है, वो मोह कलीलम है, क्योंकि उसमें एक के बाद दूसरा सुख दिखाई देगा, इसके बाद ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, और फिर उसी के अंदर फंसते रहेंगे और उसी का फल क्या है, तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम खीन पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। मिलेगा स्वर्ग उधर जाएगा, फिर पुण्य क्षीण होगा, फिर वापस आएगा, फिर पुण्य करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये तो उसी चक्कर में फिरता रहे ना, छूटेगा नहीं ना। तो इसको कहते हैं मोह कलीलम। मोह कलीलम मतलब, मोह का मतलब इल्यूजन, कलीलम का मतलब डेंस फॉरेस्ट, ऐसा जंगल है जिसमें जाने के बाद बाहर नहीं निकल सकता। एक जंगल होता है जिसमें दलदल होती है, दलदल समझते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको, स्वाम्प, क्विकसैंड, पांव अंदर रखो अंदर जाएगा, निकालने के लिए जोर लगेगा और अंदर जाएगा, और निकालने के लिए जोर लगेगा और अंदर जाएगा। तो ये ऐसा दलदल है, ऐसा जंगल है जिसमें एक तो रास्ता नहीं मिलेगा और निकलने के लिए जोर लगाओगे तो और अंदर फंसते जाओगे, उस जंगल से निकलने ऐसी ऐसे जमीन से निकलने का रास्ता क्या है, सो जाओ, लंबे सो जाओ कम से कम, क्योंकि जोर नहीं लगाओ तो कम से कम पड़े रहोगे, कोई आएगा तो निकालेगा, नहीं तो थोड़ा धक्का दो तो प्रणाम करके भगवान का इस खड्डे से निकल आओ, नहीं तो कोई रास्ता नहीं, सो जाओ उठो मत। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यति तरिष्यति,
बुद्धि मतलब तुम्हारा इंटेलिजेंस, बुद्धि योग नहीं है, ये बुद्धि तुम्हारी जो इस वक्त वेदों के लुभाव ने स्वर्ग के भोगों में मोहित हो गई है और दलदल में फंसती जा रही है, उसको व्यतितरिष्यति। व्यतितरिष्यति का मतलब विशेष रूप से आप वहां से निकालने का प्रयास करोगे अथवा उसमें नहीं फंसोगे, कर्म कांड में नहीं फंसोगे, सर्ग के मोह में नहीं फंसोगे, तुझ संसार के सुखों के लिए काम नहीं करोगे, तो तब क्या होगा? तदागंतासि निर्वेदम, तब आप निर्वेद हो जाओगे। निर्वेद तदा निर्वेदंतासि पहुंच जाओगे निर्वेदम। निर्वेदम का प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है कैलस हो जाओगे। कैलस का मतलब लोग कहेंगे तुम्हारे को, अरे स्वर्ग में नहीं जाता है, श्रोतव्य से लोग कहेंगे तुम्हारे कान में आकर, क्या करते हो रोज सारा दिन माला खर्च उठा के जपते रहते हो, तुम तो सोम का व्रत भी नहीं रखते हो, भोलेनाथ के दिन का व्रत नहीं रखते हो, भाई कैसा आदमी है तुम, शनि का भी पूजा नहीं करते, पूछो तो उसके ये तो कहेगा तो आपको सुनना पड़ेगा, वो सुनेगा लेकिन कान में उसके कुछ भी नहीं जाएगा, वो कैलस हो जाएगा, वो निर्वेद हो जाएगा, उसको ये वेद के लुभावनी बातें आकर्षित नहीं कर सकती हैं। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल फेंकने से टिकेगा नहीं, ऐसे ऐसी बातें उसके चित्त पे टिकेंगी नहीं। मटके के ऊपर तेल डाल के बाहर बरसात में रखो, उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं टिकेगी, सब नीचे गिर के चला जाएगा। तो इसने अपने आप को भगवत संबंधी कर्मों से, भक्ति से इतना चोपड़ा करके रखा है, इतना चमकी लगा दिया है कि अब इसके ऊपर वेद वाली बात उसके गले में उतरती नहीं, कान में पड़ती, चिकने घड़े के ऊपर कोई पानी की एक बूंद भी नहीं टिकेगी। तदागंता सी निर्वेदन श्रुतस्य श्रुवत श्रुतस्य श्रुति श्रुति वेद को कहते हैं, और श्रोत्य जो सुना जाए और जो शास्त्रों में लिखा है उसके ऊपर ये ध्यान नहीं देगा। अब यहाँ ये शब्द लिखा है, अब यही शब्द आप दोबारा छठे अध्याय को खोलो, छठे अध्याय में आखिरी श्लोकों में छठे अध्याय का श्लोक आप 43-42 श्लोक देखो, कोई एक ब्रह्म शब्द अति वर्तते, वहां शब्द है ब्रह्म शब्द अति वर्तते, पूर्वाभ्यासेन तेनेव, फिर यतते हृते अवश्यो अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। क्योंकि उसने पहले जन्मों में योग अभ्यास किया हुआ होता है ना, इसलिए इस जन्म में वो ऐसे वेद के लुभावने वाले बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, उसी का अतिक्रमण कर देता है। ब्रह्म शब्द अति वर्तते, इस श्लोक का अर्थ पढ़ो क्या है?
वर्चू ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अट्रैक्टेड टू द योगिक प्रिंसिपल्स इवन विदाउट सीकिंग देम, सच एन इंक्विजिटिव ट्रांसेंडेंटलिस्ट स्टैंड्स ऑलवेज अबव द रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्क्रिप्चर।
वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठ जाता है, उसको अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार अपने आप अवश्य, अवश्य का मतलब उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है, जस्ट ऑटोमेटिकली वो बुद्धि योग की तरफ आकर्षित हो जाता है, वो भक्ति योग में अपने आप आ जाता है, और कर्म कांड में उसको कोई आसक्ति नहीं होती क्योंकि पूर्व जन्म में उसने ये सब पहले कर लिया है। एक दूसरा श्लोक भी शास्त्र में मिलेगा, जो अपने मुख से गोविंद का नाम जपता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जो ये जप रहा है प्रेम से, माँ समझ लो इसने सारे वेद के पाठ कर लिए, इसने सब तीर्थों का भ्रमण कर लिया, इसने सब यज्ञ कर लिए, इसने सब तप कर लिया, बस अब केवल नाम जप के भगवत धाम जाने वाला है। इसका अर्थ ये, तो ये वेद के कर्म कांड के स्वर्ग के लोभ में नहीं फंसेगा, उस दलदल में, उस जंगल में नहीं जाएगा। तब ये लोगों के लुभावने वाली बातों में कि आज तुम शनि का व्रत रखो और कल मंगल का व्रत रखो, इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्यों? तो मुरारी के चरणों को पकड़ लिया है, भगवान के चरण को पकड़, भाई मंगल भी उसका, बुध भी उसका, सोम भी उसका, तो जिसके सब है उसी को पकड़ लो, फिर सबको पकड़ने की क्या जरूरत है? इसका मतलब लोग उसको कहेंगे भाई ठीक है तुम हरे कृष्ण में चाहते हो जाया करो, लेकिन कभी कभी तो तुम्हारे को आना चाहिए। तुम कभी कभी क्यों, सभी उधर बैठे इधर आगे क्या करें? लेकिन ये स्तर बहुत ऊपर का है। तो ये इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि जब आदमी भोग और ऐश्वर्य की कामना से ऊपर उठेगा, तब वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकता है। भोग और ऐश्वर्य वेदों में, कर्मकांड में वर्णित है। उससे जब वो कैलिस हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा, तब वो भगवान के चरणों की भक्ति कर सकता है। अब ये श्लोक अर्जुन सुनेगा, तब अर्जुन को प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि बोल कृष्ण बोल रहा है, और कोई ये बोलेगा तो लोग कहेंगे नास्तिक है। वेद की तो सीधा सा वेद को, वेद का विरोधी श्लोक है, लेकिन वेद देने वाला बोल रहा है, इसको इसको गलत नहीं कहा जा सकता। आदमी बोलता तो ये तो वेद जब याद, जिसके बाद श्रुति विपरी विप्रति पनाते यदा स्थात्यति निश्चला समाधाव अच्चला बुद्धिस् तदा योगम अवापश्यसि। अब श्रुति विपरीत विप्रतिपनाते यदा निश्चलति यदा स्थत्यति निश्चला श्रुति विपरीतपना, श्रुति फिर वही श्रुति वेद को कहते हैं। वेद के विपरीत विप्रतिपना विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रूटिव रिजल्ट्स, विपरीत क्या विप्र क्या शब्द है विप्रतिपना, प्रतिपना विप्रतिपना, श्रुति विप्रतिपना से यदा स्थास्यति निश्चला, जब उसका मन वेदों के वर्णित फल में डोलायमान नहीं होगा, उस तरफ चंचल होकर नहीं जाएगा, निश्चल रहेगा, तब उसको समाधि अचलाव बुद्धव, तब उस बुद्धव बुद्धव माने बुद्धि योग देने वाले के ऊपर उसको पूर्ण रूप से समाधि लग जाएगी, अथवा उसके अलावा और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, उसको वही दिखाई देगा जो बुद्धि योग दे रहा है। जो बुद्धि योग दे रहा है उसी ने वेद दिया है, तो इसलिए अगर वो वेद को छोड़ के वेद को देने वाले के चरण में चला जाएगा तो भी वेद किया ही पालन कर रहा है। तदा योगम अवापश्यसि, तब वो असल में भगवान से योग के द्वारा, योग के द्वारा भगवान से अपना संबंध स्थापित कर पाएगा। श्रुति विप्रदीपनाते यदा यदा स्थास्यति निश्चला,
श्रुति विपरीत ही पना, श्रुति के विपरीत वो नहीं, श्रुति की बात को कहेगा नहीं चाहिए मुझे श्रुति के फल, मुझे इसमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बंदर के बच्चे की तरह कभी गाजर की तरफ भागे कभी अंगूर की तरफ भागे, मुझे मां को पकड़ता है लेकिन इधर उधर भागता है, इसको बोलते हैं परपना। परपना किसको बोलते हैं? बच्चा बंदर का मां को पकड़ ले, मां ने नहीं पकड़ा है बच्चे ने पकड़ा है, तो बच्चे की मत भी कभी गाजर खाने चला जाएगा फिर आ जाएगा, और बंदरिया कहीं जोर से कूदी तो गिर भी सकता है, गिरता नहीं है लेकिन गिर भी सकता है। तो वेदों के भोगों में फंसने वाले बंदर के बच्चे की तरह होते हैं, पकड़ते हैं भगवान को लेकिन अपने बल से पकड़ने का प्रयास करते हैं। और जो बुद्धो जो 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 बुद्धो बुद्धि जो बुद्धि में समाधि लगाते हैं अथवा बुद्धि योग देने वाले को पकड़ते हैं, वो बिल्ली के बच्चे की तरह माँ के मुंह में होते हैं, वो भाग नहीं सकते, जहां बिल्ली ले जाएगी वहां जाएंगे, अपने आप कहीं जा भी नहीं सकते और केवल बिल्ली के ऊपर आश्रित होते हैं, तो उसको शरणागति कहते हैं। इसका दो अर्थ ऐसे निकाले, एक परपना के स्तर पे है और दूसरा शरणागति के स्तर पे है, एक फिर भी भोग के लिए अपनी इच्छा से जाके फिर आके भगवान, वेद तो भगवान है, वेद भगवान से अलग नहीं, वेद भगवान ने दिया है, अपौरुष है भक्त शब्द, ब्रह्म शब्द है और भगवान स्वयं पर ब्रह्म है, तो एक अपने बल से वेद को पकड़ता है और एक को भगवान पकड़ता है। बुद्धि योग तो भगवान देते हैं ना, तो बिल्ली के बिल्ली की तरह बच्चे को स्वयं पकड़ते हैं और एक अपने प्रयास से पकड़ता है। तो रामानुज संप्रदाय में एक परपना कहते हैं एक को शरणागत कहते हैं। जो परपना होते हैं वो पांव पकड़ना होता है, आप किसी का पांव, कोई बच्चा मेरा पांव पकड़े मैं ऐसे उछल दूंगा तो बच्चा दूर गिरेगा जाके, तो आपके पांव पकड़ने से आप मुझे पकड़ लो ये संभव नहीं है, लेकिन मैं उसको पकड़ लूंगा तो वो कभी नहीं गिरेगा। तो पांव पकड़ना और भगवान हाथ पकड़ ले, इसमें बड़ा अंतर है। हम भगवान के पांव पकड़े या भगवान हमारा हाथ पकड़े, इनमें जब भगवान हाथ पकड़े वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम पांव पकड़े वो अपने जोर से छुड़ा भी सकता है ना। तो यहां जो ये भाव है कि श्रुति विप्रदीपनाते यदा या इसका चलती निश्चला स्थित हो जाता है, निश्चल अभी उसमें चंचलापन नहीं है, तुच्छ भोगों के लिए इधर उधर भागता नहीं है, वेदों में लिखा है लेकिन उस चैप्टर वेदों को तो देखता भी नहीं है। प्रभुपाद ने एक बार ट्रांसलेशन किया था स्वर्ग का, और जो स्वर्ग का ट्रांसलेशन किया ट्रांसक्राइब करने के लिए दिया, वो कॉपी को ट्रांसक्राइब करे सब भक्तों को इकट्ठा किया, स्वर्ग को देखो इतने अप्सरा है, उधर सोम रस है, ये तो बड़ी मीटिंग लगी है, भक्त हाँ हाँ कर रहे हैं। प्रभुपाद ऊपर से देखा कि क्या कर रहे हो, बोला आपका स्क्रिप्ट पढ़ के स्वर्ग की बात पढ़ के। प्रभुपाद ने इधर लाओ, कॉपी लिया ऐसे फाड़ा और उसको डब्बे में फेंक दिया, फिर लिखा स्वर्ग में जाने वालों को वापस आना पड़ता है, इतना लिख के किताब दे दिया उनको। बोला ये स्वर्ग का असली वर्णन लिखता हूँ तो ये दो घंटे जप नहीं करते, इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने वो फाड़ के फेंक दिया। तो असल में इतना लुभावने वाला है, सच्ची बात है कि मन उसमें अटक ही जाता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे कर्म कांड से अपने आप को ऊपर उठा ले, उपासना में स्थित करे, उपासना का मतलब उप मतलब नजदीक, आसन मतलब भगवान, जो भगवान के नजदीक जाके बैठे, और तो उस अब ये जब भगवान ने कह दिया तब अर्जुन बोल पड़ा, बोला ये आप तो वेदों के, ऐसा कौन हो सकता है, ऐसी किसकी बुद्धि है जो भगवान आपके ऊपर स्थित हो जाए और वेदों से भी विचलित ना हो, वेदों के स्वर्ग। अब देखो स्वर्ग कितना लुभावना है, इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े मजहब मोहम्मदन और ईसाई क्रिश्चियन दोनों स्वर्ग में जाना चाहते हैं, और हमारे सब सनातन धर्म वाले मरने के बाद सब स्वर्गवासी लिखते हैं,
तो स्वर्ग के ग्राहक बहुत ज्यादा हैं। सारे दुनिया के लोग स्वर्ग की ही उनके पास उनका हाईएस्ट अचीवमेंट है स्वर्ग तक पहुंचना। बहुत थोड़े लोग हैं कहते वैकुंठवासी हो गया हमारा घर वाला। ये स्वर्गवासी ऐसा है, एक लड़का ताजा नौजवान दोस्त थे, तीन चार कॉलेज में पढ़ते थे, बेस में रहता होगा पता नहीं कहीं घर गया, घर वालों ने शादी करा दी, शादी के बाद वापस दोस्तों से मिलने आया, दोस्त ने कहा तुम्हारी शादी हो गई? बोला हाँ। बोला फिर तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया? बोला हाँ मेरा घर स्वर्ग हो गया, मैं स्वर्गवासी हो गया। भाई जो स्वर्ग में रहेगा वो तो स्वर्गवासी होगा ना। तब उसके हाथ में दो अंगूठी देखी, बोला दो अंगूठी, बोला तीसरी भी आपको दिखती नहीं है? बोला कौन सी है? बोला ये एंगेजमेंट रिंग है, ये मैरिज रिंग है, और ये सफरिंग है। ये भी रिंग है वो दिखती नहीं है। ये रिंग दिखती नहीं है बाकी है सबको डली हुई। तो वेदों वालों को भी ये रिंग उसके हाथ में पड़ी होती है, सफरिंग उसका नाम, उससे बचते नहीं, उसमें सफरिंग है कि वहाँ से फिर वापस आए। अब समझो एक आदमी ऊपर रहा हो भोग करके फिर वापस इस दुनिया में आए, उसको कितना दुख होगा। तो ये तो बहुत बड़ी सफरिंग है ये। अब अर्जुन का प्रश्न सुनिए, अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि स्थस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किमासेत व्रजेत किम। अब अर्जुन ने चार पांच प्रश्न साथ में पूछ लिए है कि भगवान जो स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञ हमने आपको पहले दिन कहा था ऊपर उठी हुई बुद्धि, जो सत्य की खोज में भगवान के निकट पहुंचती है बुद्धि उसको प्रज्ञा बोलते हैं, और ऋतंभरा उसको कहते हैं जो भगवान से वर्ण भगवान को वर्ण कर ले, अथवा जो बुद्धि भगवान को पति के रूप में वर्ण कर ले वो ऋतंभरा हो गई। लेकिन प्रज्ञा वो है जो सत्य को समझने के लिए ऊपर उठ चुकी है। और स्थित प्रज्ञा का मतलब भाई बुद्धि स्थित किस में होगी? जो सदा रहने वाला होगा उसको स्थित कहेंगे ना। इस दुनिया में सदा रहने वाली चीज क्या है? जय जगन्नाथ। दुनिया में सदा रहने वाली क्या चीज है? भगवान। बाकी कुछ सदा रहने वाला नहीं है। तो स्थित बुद्धि भगवान में स्थित हुई, इसका अर्थ ये निकलना चाहिए जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है। स्थित प्रज्ञ का भाषा वो कैसे बोलता है, अथवा उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका उठना बैठना कैसा होता है? समाधि स्थस्य केशव, वो तो समाधा आपने बोला वो समाधि में स्थित होता है। समाधा इस केशव, वो तो आपके ध्यान में तलीन होगा। समाधा स्थित का मतलब है कि दुनिया का पता ही नहीं है और पूर्ण रूप से भगवान में तलीन है। समाधि का मतलब है जिसको बाहर कुछ दिखाई न दे। खुली आंखों की समाधि होती है भगवान को श्रृंगार करना, खुली आंखों की समाधि। समाधि में क्या किया जाता है? भगवान को चरणों से देखना शुरू करते हैं। 8 इंच के भगवान का चतुर्भुज रूप हृदय में होता है, अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक ये यहाँ है। उसको चरणों से देखना शुरू करते हैं और फिर उसके नाभि को देखते हैं, फिर उसकी भुजाओं को देखते हैं, फिर उसके कोत्सव मणि को देखते हैं, पूर्व मखमल। तो ये तो जब भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं ये खुली आंखों से समाधि। तो समाधि का अर्थ हुआ जिसका ध्यान सदा भगवान में लगा हुआ है। केशव आस्ते, हाँ स्थित भी जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है अथवा भगवान में टिक गई है। भीष्म पितामह की प्रार्थना श्रीमद् भागवत में नवे अध्याय में पहले स्कंद में है। उधर पहले श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, धी मेरी बुद्धियां धी है ना, मेरी बुद्धि कृष्ण मैं आपको समर्पण करता हूँ। ये भागवत का पहला स्कंद पड़ा है लाइव। ये जो स्थित धी है, स्थित प्रज्ञ है, इसका अर्थ ठीक तरह समझना चाहिए। फर्स्ट कैंटो नाइन्थ चैप्टर हिंदी लाइन, चलो संस्कृत श्लोक निकालते हैं। चैप्टर नाइन विशुद्धारण
इति मतिर उपकल्पिता विच्छर
मति, उधर बुद्धि को मति कहा है, बुद्धि को मति कहा है। ये मेरी मति, ये मेरी बुद्धि, ये मेरी धी, आज तक मैंने इसको किसी को नहीं दी है। अब एक मिनट थोड़ा और, चौथे स्कंद भागवत में एक प्रसंग को सुनिए। नारद कहते हैं प्राचीन बहित को पुरंजन आत्मा है और वो बुद्धि से आके विवाह करता है, पुरंजनी से। तो बुद्धि किसी न किसी से विवाह करती है, ये वो बुद्धि है जिसने भगवान से विवाह किया है अथवा आत्मा में स्थित होकर। तो स्थित धी कौन सी है? जिस बुद्धि ने भगवान से कप से पानी ग्रहण किया, उसका हाथ पकड़ लिया, वो बुद्धि। किम प्रभाषेत वो बोलता कैसे है और किम प्रभाषेत, उसका एक तो होता है दूसरे उसको कैसे देखते हैं अथवा उसका उठना बैठना कैसा है, दूसरा वो स्वयं संसार से कैसे व्यवहार करता है। एक दूसरे उसको कैसे देखते हैं, एक वो संसार को कैसे देखता है, ये दो दृष्टि हो गई। और तीसरा किम आसीत, कैसे बैठता है, किम व्रजेत, और चलता कैसे। तो एक बैठता कैसे है, उसका श्लोक दो श्लोकों के बाद आएगा, वो पहले सुन लीजिए कैसे बैठता है। ये श्लोक पहले पढ़ लीजिए तो फिर आपको आसान होगा। भगवान कहते हैं यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वो कैसे बैठता है, तो बोलता वो कछुए की तरह बैठता है। जब कोई उसको देखने वाला नहीं है तब अपने अंग सारे बाहर निकाल देता है, घूमता है, चलता है, फिरता है, खाता है, और जब कहीं से थोड़ा सा भी भय होता है सब अपने अंग अंदर में ले लेता है। और इतना कठोर उसका कोच है ऊपर के वो कुछ देख उसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये जो स्थित प्रज्ञ होते हैं ना, ये जब मंदिर में जाते हैं तो नाचते हैं, कूदते हैं, हलवा खाते हैं और रसगुल्ला खाते हैं, रसमलाई खाते हैं, लेकिन जब बाजार में जाते हैं तो दुकान के ऊपर कोरमा की तरह अपने जबान को अंदर कर देते हैं, जेब में हाथ डालते नहीं हैं, कुछ पैसे का खर्च करते नहीं हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, वो तो कोरमा की तरह अपना जीवन बिताते हैं। मंदिर में नाचेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, कथा दो घंटे बोलेंगे, बाहर उसको बोलो कि न्यूज़पेपर पढ़ो, देखेंगे नहीं, बोलो टीवी देखनी है, खरीदेंगे नहीं। तो वो इंद्रियों को अंदर घुसा देते हैं उस वक्त, फिर कुछ भी करो वो सख्त हो जाते हैं। इसका परिभाषा इसकी है। वो कैसे बैठते हैं, उनका मन बाहर जहाँ लोग जहाँ जाके घूमते हैं वहाँ उनको अच्छा नहीं लगता,
वो जहाँ सुरक्षित समझते हैं वहीं अपनी इंद्रियों को निकालते हैं। प्रसाद खाने में इंद्री निकाल लेंगे, हाँ दूसरों की सेवा के लिए इंद्री निकाल लेंगे, नहीं तो उनको वो अपनी इंद्रियां अंदर कर लेते हैं। तो उनका जीना कैसे है, भगवान के लिए जीते हैं, भक्तों के लिए जीते हैं, सेवा के लिए जीते हैं, भोग से उसने अपने आप को मुक्त कर रखा है। ये कछुए को हमने राधा कुंड में पेड़ा था, पेड़ा दिया तो आके खाने लगा प्रसाद, वो भी खा रहा था हमारे पास आके खा रहा था पेड़ा, वरना पानी में क्यों सब सुकड़ जाता है। तो प्रसाद खाए बाकी चीजों में अपने अंगों को वापस अंदर कर दे, भगवान को देखे तो दो घंटा देखता रहे और उसके कान में डाले हुए कुंडल को भी देखे और नाक के नीचे मोती को भी देखे और राधा रानी को बहुत सुंदर इधर चंद्रकला लगी है उसको भी देखे, बिंदिया को भी देखे, लेकिन बाहर काम से किसी स्त्री को न देखे। इधर देखने में दो घंटे देखे, अच्छी तरह से देखे, कपड़ों की मैचिंग देखे, सब हरे हैं, सब पीले हैं, सब लाल हैं, लेकिन बाहर पत्थर की मूर्ति को भी नहीं देखे जो बाजार में है। मूर्तियां देखो दुकान में भी है, वो माया की मूर्तियां हैं और ये भगवान है साक्षात, वो भी चमकते हैं, वो भी शोकेस में रखी हुई है, लेकिन उसको नहीं देखता है, इसको देखता है। तो देखना मना नहीं है, लेकिन भगवान को आंखों से जी भर कर देखो, लेकिन माया और मोह से काम से देखोगे तो डूबोगे, भगवान को देखोगे तो तर जाओगे। तो ये उसके इंद्रियों का व्यवस्था कैसे है, इंद्रियों को पूरा काम लेता है जहाँ भगवान की सेवा में लगनी है, और जहाँ भोग है वहाँ बिल्कुल इंद्रियों को स्थल कर लेता है, अंदर खींच लेता है। अब भगवान क्या बोलते हैं, 55 श्लोक को पढ़ते हैं। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं, किसको, अरे कृष्णा, स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं, जिसको कथा में फोन नहीं आता है। नहीं, मैं इसमें लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ। कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। पार्थ, देखो भगवान से जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है तो भगवान बड़े स्नेह से बोल रहे हैं। पार्थ जब भी कृष्ण अर्जुन को कहेंगे तब उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, जैसे बाप बेटे के ऊपर। पार्थ स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं जिसने मन से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाओं को प्रजहाती का मतलब निकाल के बाहर फेंक दी। प्रजहाती जहाती, जो पहले जहाती कहा था अभी जहाती था ना, ये प्रजहाती है। जहाती और प्रजहाती में कितना अंतर है आपको देखना है तो तीसरे अध्याय में जाइए। तीसरे अध्याय में पहले भगवान कहेगा जहाती, फिर कहेगा प्रजहाती। देखो तीसरे अध्याय के लास्ट श्लोक में देखो प्रजहाती है जहाती है, लास्ट श्लोक में। थर्ड का लास्ट क्या है, आत्मा आत्मा क्या है, एवं एवं बुद्धि परम बुद्धवा, हाँ फिर जही शत्रु महाबाहो, जही, अच्छा ये जही है। और इससे दो श्लोक आगे देखो प्रजही है क्या है, वहां आदाओ इंद्रिय प्रजही है ना, वहाँ
तस्मात् स्वम इंद्रियानि
आदाओ प्रजही अब प्रजही का अर्थ क्या है, जही और प्रजही में कितना अंतर है। प्रजही का मतलब है किसी को रोकना और जही का मतलब है उसको उठा के फेंक देना। तो इतना दोनों, प्रजही का मतलब इच्छा होती है उसको रोको, ये प्रजही हो गया, और जही का मतलब उसको जड़ से ही निकाल दो, कभी हो ही नहीं। तो ये अभी प्रजही का स्तर है। प्रजहति, जब वो मन से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाओं को रोकता है तो मन से उत्पन्न वाली कामनाओं को रोकता है तो कहीं तो लगाएगा ना अपने आप को। आत्मने आत्मना स्थित, वो तो आत्मा में रमण करता है, वो मनी राम नहीं है, वो आत्मा राम है। जो मन के लिए काम करे वो मनी राम, जो आत्मा के लिए करे वो आत्मा राम। तो वो मनी राम नहीं है, वो इंद्रिया रामो नहीं है। इंद्रिया राम और मनी राम इंद्रियों का भोग में लगा रहे, मनी राम मन के इच्छाओं को पूरी करता रहे, और ये आत्मा राम है। आत्मे आत्मना स्थित, उसको तो अपने आत्मा में इतना आनंद आने लगता है, आत्मा का प्रकाश को देखता है, आत्मा के मधुरता को देखता है, तो उसको फिर मन का बाहर जाने को वो रोक लेता है। इसको आप कैसे समझेंगे सामान्य रूप से? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई अच्छा उदाहरण जिससे इस बात को समझी जाए, किसी को आता है कोई ऐसा, कोई ऐसे किसी काम में आनंद आ जाए कि उसको अपनी सब बातें भूल जाए, कुछ याद ही नहीं रहे क्या करना था मुझे।
आईपीएल का मैच हुआ था, क्रिकेट मैच हुआ था, आईपीएल का मैच हुआ है, चलो केबल कनेक्शन निकाल देना, ये प्रजहति और टीवी उठा के फेंक देना,
ये प्रजहति और जहति, ये तो ठीक है। एक प्रजहति केबल निकाल देना और जहति टीवी को ही बेच देना। अच्छा उदाहरण है, मैं इसमें देखता हूँ कि आत्मा में इतना आनंद लगे आने लगे कि इंद्रियों और मन की कुछ चीज के भोगने की इच्छा ही न हो। घर में शादी होती है, जब काम करने वाले काम में इतने मगन होते हैं 24 घंटा उसको खाना याद ही नहीं आता, क्योंकि एक काम में इतने वो मगन हो जाते हैं कि बस यही काम हमको करना है, उसको खाना भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, नींद भी नहीं आती। तो जैसे क्योंकि वो उनको लगता है कि यही काम हमारा संपन्न होगा तो हमारा जीवन सफल हो गया, तो इसके लिए उसको बाकी कुछ दुनिया की बात ही याद नहीं आती है। ऐसे ही जब आत्मा का लगन भगवान से होने लगे और उस विवाह में जो खड़ा हो उसको दुनिया को देखने की क्या जरूरत, जो देखे कि मेरी आत्मा मेरी बुद्धि इस वक्त भगवान को वरण कर रही है, अथवा जिसके हृदय में जिसके आत्मा भगवान का प्रकाश हो जाए, भगवान की लीलाएं दिखने लगे, तो फिर उसको दुनिया में कुछ देखने की क्यों जरूरत पड़ जाती है। भाई साधु महात्मा लोग एकांत में वृंदावन में रहते हैं, कई बार जाते भी नहीं है, कितना सुखी रहते हैं, कुछ जरूरत भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं जलाते, एक बार कहीं से मिल गया खा लिया बस हो गया, भिक्षा में जो मिल गया तो खा लिया, बाकी आनंद में भगवान का भजन कर रहे। तो ये स्तर ऊपर का है, हमारा स्तर नहीं है, लेकिन स्थित प्रज्ञ वो है जिसको मन के सारे मन में संकल्प विकल्प कामनाएं जो उठती हैं उसको उन्होंने दबा दिया है, रोक दिया है। यह प्रजहति, प्रभुपाद जी ने प्रजहति का अर्थ लिखा है गिविन अप। तो ये स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन है। अब वो कैसे उसको कोई बाहर से देखेगा तो कैसे समझेगा कि ये स्थित प्रज्ञ है? तो बाहर के लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे जब, तो स्थित प्रज्ञ कैसे मानेंगे? पढ़िए, दुखेषु अन्विद्ध मनः सुखेषु विगत स्पृहः
वीत राग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिर उच्यते।
ये बाहर से लोग जब देखेंगे तो दुखेशु अनविगत मनः, उद्विगन शब्द देखो, उद्विगन शब्द है ना, उद्विगन पता है किसको कहते हैं? उद्विगन का अर्थ ये है, हम भोजन करते हैं तो भोजन को जाना चाहिए पेट में, अगर ये भोजन पेट में जाने के बजाय उल्टी की तरह बाहर आए तो उसको उद्विगन कहते हैं। उद्विगन का मतलब उल्टी होना, इसका मतलब जो चीज बर्दाश्त नहीं हो सके, जिसको सहन नहीं किया जा सके तो उसको उद्विगन कहते हैं। दुखेश अनुद्विगन मनः, दुख कितना भी बड़ा आ जाए उसको उद्विगन होता ही नहीं है, उसका मन उस दुख से विचलित नहीं होता। नारद की माँ मर गई, नारद 5 साल का था, उसने कहा भगवान एक ही तो मेरी मुंह और ममता था, अच्छा किया आपने उठा लिया, अब मैं आपकी भक्ति में लग जाऊंगा। बड़ा दुख था, लेकिन नारद ने क्या लिखा है देखो भागवत में, ऐसे बड़े दुख की हमने अपने जीवन में अनुभव किया, ऐसे जब आप भक्ति में आते हैं बड़े से बड़ा दुख आता है, अपने बच्चे का मृत्यु होता है तब भी कहते हैं भाई पहला मेरे घर में थोड़ी हुआ है, बाकी किसी का पहले नहीं हुआ है क्या, क्या मैं एक ही हूं जिसके घर में ये हुआ है? और फिर जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, उसके लिए रोना ये कोई बुद्धिमानी है क्या? एक आदमी ने किसी को 500 रुपया उधारा दे दिया, 3 साल मांगा नहीं, जब उसके घर में किसी का मृत्यु हो गया हुआ तब वो रोने लगा, उसी वक्त उसने कहा मेरे पैसे वापस दो। तो सबने कहा भाई इसके घर में दुख आया है, आज क्यों मांगने आया, कब दिए थे? बोला 3 साल पहले। बोला इतने दिन मांगा नहीं, आज क्यों मांग रहे? बोला अभी तक मेरे को विश्वास था ये दे देगा, भगवान ने जो चीज दी थी वो वापस ले लिए, इतना रो रहा है मेरे पैसे नहीं देगा, मुझे आज इसके ऊपर से विश्वास उठ गया। जिसकी चीज थी उसने माँ वापस ले ली, उसके ऊपर क्यों जा रहा है? तो भगवान के भक्त का नहीं, हम जीवन का हमारा अपना अनुभव है, ऐसे स्थिति में एक संकट आया है तो पहला मेरे ऊपर थोड़ी आया, सबके ऊपर दुनिया में आता है, राजा महाराजाओं के ऊपर आया है। युधिष्ठिर महाराज एक दिन रोते हुए, कौन ऋषि है उसके सामने, कहते मेरी पत्नी का हरण करके जयद्रथ ले गया, मुझसे ज्यादा कोई दुखी संसार में होगा क्या? महाभारत में रामायण की कथा बताते हुए ऋषि कहते हैं महाराज आपकी सुबह गई थी शाम को आ गई, राम जी की सीता 1 साल के लिए चली गई थी, और 3-4 और उदाहरण पूरी राम कथा महाभारत के अंदर बताते हैं ऋषि युधिष्ठिर महाराज को कि इतना बड़ा दुख। फिर मेरे हंसी की बात याद आ रही है, शहंशाह अकबर ने कहा बीरबल को एक दिन कि आपके यहाँ लोग रामायण बहुत पढ़ते हैं, आप एक अकबरायण लिखो। तो एक महीने के बाद बीरबल का अकबरायण तैयार हो गई। बोला महाराज सब तैयार हो गई, एक प्रश्न का उत्तर आपसे पूछना पड़ेगा। बोला बोलिए क्या है? बोला महाराज आपकी पत्नी को कौन अपहरण करके ले गया? बोला ये क्या पूछता है? बोला रामायण, राम की पत्नी को तो रावण हर कर। बोला ऐसी रामायण मुझे नहीं चाहिए, आप मेरी महाभारत अकबर महाभारत लिखो। महाभारत लिखते एक महीने के बाद महाभारत तैयार। बोला एक प्रश्न बाकी रह गया, उसका आप उत्तर दीजिए। पूरा हो गया पूरा। बोला क्या प्रश्न है? बोला आपकी पत्नी के 5 कौन पति है? द्रौपदी के तो 5 पति थे। अब बोला ये अकबरायन और ये महाभारत हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसे रहने दो। तो ये शास्त्रों में दुख के ऊपर विचलित नहीं होते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है उसको कैसे पहचाना जाता है? दुख आने के ऊपर भी, वो ब्रह्मा जी कहते हैं दुख आने के ऊपर भक्त कहता है भगवान मैं बड़ा पापी अपराधी, मुझे तो बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, थोड़े सा दुख दे के आपने मेरा उद्धार कर दिया, ये दुख भोगने से मैं यही संकट भोग लूं तो आगे जन्म लेने से बच जाऊंगा। तो ये दुखेशु अनविगत मनः, दुख से विचलित मन नहीं होता है उसका, आया है तो चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सारी उम्र तो रहने वाला है नहीं दुख, जो मेहमान है उसके आने से परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन आजकल लोग मेहमान से बहुत परेशान होते हैं। एक मेहमान घर में आया, पति पत्नी को घर में मेहमान को रखने की इच्छा नहीं थी, दरवाजा बंद करके और जोर जोर से मारने लगा और पतली चिल्लाने लगी, घर में अगर पति पत्नी झगड़ा करे तो मेहमान क्या बैठेगा, जोर जोर से मारने लगा, वो चिल्लाने लगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान का आवाज नहीं आया तो बाहर निकल के दोनों आए, पत्नी कहती है देखो कितना मैंने जोर से चिल्लाया, पति कहता देखो मैंने तुमको कुछ भी नहीं मारा, मैं तो दीवार को मार रहा था ना। तब खटिया के नीचे मेहमान बैठा था, बोला मैं कब गया, मैं कब गया, मैं भी तो यही बैठा। तो दुख में जिसका मन अनविगत, क्या शब्द है, दुखे जो अनविगत, ये भक्तों के लक्षण में बारहवें अध्याय में है, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते, वो मुझे भक्त प्यारा है जो कभी उद्विघन नहीं होता है। तो एक तो दुख में उद्विघन नहीं होता है, दूसरा सुखेशु विगत स्प्रह, स्प्रह का मतलब होता है इच्छा हो, सुख मिलने की इच्छा हो, उससे विगत, उस कोई इच्छा नहीं है कि मुझे सुख मिले, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आए। तो विगत स्प्रह, स्प्रह का अर्थ है विदाउट बीइंग इंटरेस्टेड, सुख में उसको कोई विशेष स्पर्हा नहीं है, अथवा सुख के लिए काम नहीं करता है, भगवान के लिए काम करता है। सुख आएगा कि नहीं आएगा उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, दुख आएगा तो दुखी नहीं आएगा होगा और सुख के लिए ज्यादा लालायत नहीं होगा। वीत खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, राग आसक्ति भय मृत्यु का क्रोध, ये तीन शब्द चौथे अध्याय में तीनों शब्द हैं, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम पूता मदभावम आगता, उधर इन तीनों की परिभाषा बहुत अच्छी लिखी हुई है, कभी पढ़ देखें, पढ़ के देखना, बड़ी अद्भुत है। वीत राग, उसमें किसी को किसी चीज में उसको आसक्ति है नहीं, सोना सामने पड़ा है तो उसको आसक्ति नहीं है, अपने लिए नहीं, पत्थर को सोने को समान समझता है, लेकिन सोना भगवान को अर्पण करता है, पत्थर दीवार में लगाता है, ये समझता है कि पत्थर किसके काम का है, सोना का किसका काम का है, लेकिन उसको उसके अंदर आसक्ति नहीं है अपने लिए। भय, कुछ जाने का भय ही नहीं है, भाई है क्या चले जाएंगे। एक पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने कहा तुम्हारे ऊपर शनि का दोष है, तुम 500 रुपये की पूजा कराओ। बोला 500 रुपया तो है नहीं महाराज। बोला 250 वाले 251 की पूजा करा सकते हो। बोला महाराज 251 तो नहीं है, 101 रुपये की पूजा कराओ। 51 रुपये की पूजा तो कराओ शनि की। महाराज 25 की, 11 की पूजा करा लेगा। महाराज 5 रुपये की पूजा। महाराज सोचूंगा। बोला जाओ बेफिक्र, क्या करेगा शनि तुम्हारा, अभी तुम्हारा शनि करेगा क्या, तुम्हारा है कुछ नहीं। तो ये जो इसका भय तब हो जब कुछ जाने का डर हो, है कुछ नहीं तो क्या भय होगा, शनि है तो घूमे आए जाए। विगत भय क्रोध, क्रोध तब आता है जब अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, उसकी अपनी इच्छा ही नहीं है तो क्रोध क्यों आएगा। क्रोध से रहित है, क्रोध से अपने आप को उसने, उसको क्रोध आता है अपने ऊपर आता है कि मैं सुबह सवेरे क्यों नहीं उठता, उसको क्रोध आता है कि मैं जब क्यों नहीं आता, दूसरों के ऊपर क्रोध नहीं आता इससे। तो वो लोगों को बाजार में किसी के ऊपर क्रोध करता हुआ दिखेगा नहीं, कुछ जाने का उसको भय है नहीं और किसी चीज को, किसी चीज में उसकी आसक्ति है ही नहीं। तो ये उसकी बाहर से लोग देखेंगे, कहेंगे ये स्थित प्रज्ञ है, और स्वयं वो आप स्वयं कैसे दुनिया को देखेगा। यदा सर्वत्रा विस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनिंदन्ति न द्वेषति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रा भी स्नेह यद्यत् प्राप्य शुभाशुभम। शुभ कभी जीवन में होता है और कभी अब अशुभ भी होता है जीवन में, या सबके जीवन में शुभ अशुभ दोनों आते हैं। इसको स्नेह नहीं है कि मुझे शुभ ही केवल आए और अशुभ नहीं आए, ऐसा इसकी धारणा नहीं है। जीवन में शुभ आए या अशुभ आए, दोनों के आने के ऊपर वो विचलित नहीं होता है। न शुभ आने के ऊपर कूदने लगता है, नाचने लगता है, और न अशुभ आने के ऊपर रोने लगता है। तो उसके लिए शुभ और अशुभ दोनों में स्नेह नहीं है, ना भी निंदंती न द्वेष्टी, अशुभ की निंदा नहीं करता है और शुभ की अशुभ की निंदा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। कोई आदमी बुरा करता है तो उससे द्वेष नहीं करता है, कोई शुभ करता है तो उसकी प्रशंसा ज्यादा नहीं करता है। मेरे कर्म का है, जो मेरा है था आया था, किसको देना था किसको लेना था, तो उसका व्यवहार वो अंदर से सुख और दुख के वो आने के ऊपर, शुभ और अशुभ के आने के ऊपर कोई उसको स्नेह नहीं है। मुझे सुख ही आए ये नहीं, शुभ ही आए जीवन में ऐसे नहीं, अशुभ भी जीवन में आएगा, मृत्यु भी किसी की होगी, चोरी भी होगी, कुछ जाएगा अखा भी, कभी हाथ पांव भी टूटेगा, ये सब जीवन में होना है। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक हो गया, आपको एक महीना खाटिया से नीचे नहीं उतरना है, बेड के ऊपर रहो। लोग देखने गए, डॉक्टर साहब आपको तो बड़ा कष्ट है। बोला क्यों, कितनी भगवान ने कृपा की है, एक महीना खाट के ऊपर बैठा रहूंगा, लोग आएंगे पूछेंगे, कोई खिलाएंगे कोई धुलाएंगे कोई साफ करेंगे, भगवान ने कम मेरे ऊपर कृपा की है, एक महीना आराम से राजा की तरह रहूंगा। भाई कोई इसमें मेरे को तकलीफ क्या है, खिलाने वाले आएंगे, पूछने वाले आएंगे, देने वाले आएंगे, मैं तो सोया रहूंगा ना। तो ऐसा तो वो दुख में भी सुख को ढूंढ लेते हैं कि तो इतना कभी टाइम भी नहीं मिलता था आराम से बैठने का, आप आराम से बैठे। तो ये इसका अर्थ है कि उसका रिएक्शन दुख और सुख और शुभ और अशुभ की तरफ दुनिया वालों की तरह नहीं होता। ये बहुत ये कैसे भक्तों की जीवन में, हमारे भक्तों के कई आप देखेंगे तो कई भक्तों की जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी। प्रभुपाद जी दो बार हार्ट अटैक हुआ है जहाज में जाते ही अमेरिका रास्ते में, लेकिन कंप्लेन कहीं लिखी हो कि भगवान हमारे को हार्ट अटैक क्यों कहा, कहीं लिखा है नहीं, दुख आया था कोई बात नहीं गुजर गया, भगवान की इच्छा होगी मेरे को पवित्र कर रहा है। जब भी कोई निंदा करे कोई बुरा भला कहे तब ऐसे समझदार कहते हैं ये मेरी पवित्रता के लिए है, मेरी शुद्धि के लिए है, मुझे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। वैसे भी आप हंगामा करोगे तो जो उसने शब्द कहा है वो वापस तो ले नहीं सकता है, ले सकता है क्या, जो आ गया वो आ गया, अब चिल्लाने से क्या होगा। आप सहनशील हो जाओगे तो दूसरे का जीवन बदल जाएगा। एक आदमी गंगा में सुबह स्नान करने जाता था, रोज करके आता था, एक बदमाश ने कहा कि आज इसका मजाक करते हैं, वो छत के ऊपर बैठ गया, वो स्नान करके वापस आया, ऊपर से उसके ऊपर थूका, बाद दोबारा गया गंगा में स्नान करने, 15 बार 20 बार थूकता रहा और महाराज वापस स्नान करने गया। अब उसका थूक थक गया, थूक खत्म हो गया, कितना थूके, अब बोल भी नहीं सकता, ऊपर से नीचे उतरा महाराज के चरणों में गिरा, महाराज थूक खत्म हो गया। महाराज हंस से बोला, आज मेरा सौभाग्य है, आज एक दिन में मैंने 51 बार गंगा का स्नान किया। तो महीने का काम एक दिन में हो गया, आपने आज बड़ा मेरे ऊपर कृपा और हित की है, आपका थूक सूख गया टाफी का। पताशा पुराने जमाने में प्रताप दिया कि पताशा खाओ थूक तुम्हारा ठीक हो जाएगा, बाकी आपने आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। एक नाव में भक्त बदमाशों के साथ जा रहा था, उसको गायत्री करने की 12 बजे तो उसने घड़ी नहीं थी, एक बदमाश को कहा टाइम कितना हुआ है, बदमाश तो पहले ही उसको गंजा देखा भक्त को और चुटिया देखी, उसको तो पहले से मजा लेने का मूड था, उस घड़ी को देखा और उसकी इस सर के ऊपर मारा एक, हमारा तो सर हिल गया जोर से मारा, हाथ जोड़ के कहता हे भगवान कितने दयालु हैं, 1 घंटा पहले पूछा होता और 12 मारा होता तो मेरा क्या होता। एक कितना बड़ा दयालु है भगवान। तो ये ऐसे लोगों का व्यवहार इन सब चीजों की तरफ ऐसा हो जाता है, ऐसे बहुत कम दुनिया में लोग हैं लेकिन ऐसे। प्रभुपाद को किसी ने कहा कि पाकिस्तान तो आपके ऊपर बम फेंके, तो प्रभुपाद ने कहा मैं बम के अंदर कृष्ण को देखूंगा कि मेरे से मिलने आ रहा है। उत्तर प्रभुपाद ने ऐसा दिया। बहुत एक लड़के ने बदतमीजी प्रभुपाद से अमेरिका में की, भक्त लड़ने के लिए गए, प्रभुपाद कहना हो सकता है पुराने अगले जन्म का मेरा कोई इससे मैंने अपराध किया हो, इसको बोलने दो। दूसरे दिन आया, प्रभुपाद ने उसको पुस्तक दिया, प्रसाद खिलाया, द्वेष नहीं किया। प्रभुपाद के जीवन में ऐसे बहुत से अद्भुत उदाहरण मिलेंगे जो सहनशीलता के हैं, दुख की चिंता के नहीं है, सुख में सुख क्या। इतने बड़े मंदिर बनने के बाद भी कहते मैं तो छोटा सेवक हूँ, मैं तो भक्तों का सेवक हूँ। पूछा उससे कि जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद आपका डिसाइपल है, पत्रकार ने पूछा क्या जॉर्ज हैरिसन आपका डिसाइपल है महाराज, प्रभुपाद चुप रहे और कहा आई एम एवरीबॉडीज सर्वेंट, मैं सबका सेवक हूँ, मेरा कोई शिष्य नहीं, मैं सबका सेवक हूँ। जैसे बाप अपने बच्चों को लिखा पढ़ा के अच्छा बनाता है, ऐसे इन मेरे स्टूडेंट ये मेरे शिष्य मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं इनकी सेवा करता हूँ, मैं इन सबका सेवक हूँ, मैं किसी का मास्टर नहीं। ये किताब में लिखे नहीं है, जो किताब ऐसा लिख सकता है उसके अपने जीवन में ये सब चरित्र आपको देखने को मिलेंगे। अब हमने 58 श्लोक पढ़ लिया था, 59 श्लोक में आइए। विश्याविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते। विषय का मतलब इंद्रियों के विषय, देखने का सुनने का खाने का, विनिवर्तन्ते अच्छी तरह से अपने आप को मुक्त कर दिया है, विषयों के भोग की कोई इच्छा नहीं है, विषयों के भोग की इच्छा नहीं है। क्यों? निराहारस्य देहिना, अगर आप शरीर को भोजन नहीं देंगे तो दुबला पतला कमजोर शरीर भोग कर नहीं सकता है। भाई आप 2 दिन पानी नहीं पिए तो आप बोल भी नहीं सकेंगे, आपके भोग की इच्छा तो हो ही नहीं सकती। तो जैसे नहीं खाने से शरीर निराहारस्य देही न, आहार नहीं लोगे तो देही भोग कर नहीं सकती है, जैसे न आहार लेने से देही भोग नहीं कर सकती है, वैसे वो किसी भोग में आसक्ति नहीं है।
तो भाई आखिर उसको कहां से सुख मिल रहा है? भाई विषयों का सुख उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे अच्छा सुख मिलता होगा ना? बोला हाँ, रसो वर्जम रसो अप्यस्य, उसको तो बहुत बड़ा रस मिल रहा है। जैसे भागवत का रस किसी को मिल रहा है, भागवत रसामलयम, भागवत का रस है जो उसका पीता है। उसको परीक्षित महाराज को पांचवें दिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पांच दिन हो गए महाराज जलपान कर लो। बोला प्यास तो उस दिन लगी थी जब ऋषि के गले में सर्प डाला था, अब आपके भागवत के रस को पीने के बाद प्यास नहीं है, भूख नहीं है, ये अमृत ही मेरे जीवन को सार्थक कर रहा है। तो ऐसे जिसको भागवत अमृत मिले, नाम अमृत मिले, कथा अमृत मिले, तो वो उसको रस देता है और उसको दिखता क्या है? परम दृष्टवा। परम कहते हैं भगवान को, जो भगवान को देख लेगा वो संसार को देख के क्या करेगा? उसको फिर संसार को देखने की जरूरत नहीं। बाण के बिहारी का पूजा से बाहर दुकान था मिठाई का, रोज रात को सोते समय प्रहर चार पेड़े बांके बिहारी को अर्पण करते थे। सो एक दिन पुजारी को पेड़े भूल गए अर्पण करने, टाइम खाने का हुआ, दुकानदार का दरवाजा रात को खटखटाया चार बजे, किसने खटकाया पता नहीं, वो उठा, चार पेड़ा दो, चार पेड़ा दिया, वो लेके चला गया। सुबह पुजारी ने कहा मैंने रखे नहीं थे पेड़े, कहां से आए? बाहर आए, पूछा पेड़े वाले से, तुम्हारे से मैं पेड़े ले जाता हूँ रोज रात, तुम सुबह चार बजे आए थे ना? बोला मैं तो नहीं आया। बोला पेड़े कैसे अंदर पड़े? कौन आया था? मैं नहीं आया। तब उसके मन में आया कि भगवान पेड़े लेने मेरे पास आया, उसको देखा, अब मैं संसार को देख के क्या करूंगा? दुकान बंद कर दिया, पेड़े बंद कर दिए, बस वो आंखें बंद कर दी। बोला वो देख लिया तब वो बहुत है, अब और दुनिया को देख के क्या करूंगा? इसके बाद भी किसी को देखने की जरूरत है क्या? परम दृष्टवार निवर्तन से जिसने भगवान का ऐसे आनंद का रस पी लिया, वो फिर दुनिया को देख के क्या करेगा? तो ये परम दृष्टवार निवर्तन से रसो वर्जम रसो अप्यास्य, उसको रस आ रहा है, उसने उसको उत्तम चीज प्राप्त हो गई है, इसलिए तुझ चीज को छोड़ दिया है। मानो ये मोबाइल किसी का है, जिसका भी है उसको मैं कहूं कि आपको ये मोबाइल दे रहा हूं, तो इसको वो छोड़ के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये किसका है भाई? हाँ, ये किसका है? नंबर चेंज करके फिर ये लेने के लिए तैयार है? हाँ भाई, जिसको अगर एक पानी का ये थोड़ी देर में मुझे गिलास लेगा, ये स्टील का गिलास लाएगा, और कोई मुझे कहे कि देखो ये चांदी का गिलास है, इसमें पाप प्रभु जी पानी लोगो, स्टील के गिलास तो मैं वहां जाने, तो ये अच्छा है भाई, अगर अच्छी चीज मिलेगी तो छोटी चीज को कौन उठाएगा? तो ऐसे ही जब तुच्छ इंद्रियों के सुख में क्यों आसक्त होगा जब उसको उत्तम रस मिल रहा है? तो ऐसे उत्तम रस मिलता है स्थित प्रज्ञ को, इसलिए तुच्छ रस में उसको आसक्ति ही नहीं होती है। अब कहां पहुंचे हम? यततो हे अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि परमाथिने हरन्ति प्रसभं मनः। अब भगवान सावधान कर रहे हैं, कल संडे है ना, तो आज तो जल्दी नहीं जाना है, कल ऑफिस किसी की नहीं है ना, तो दूसरा अध्याय पूरा करें। हरे कृष्णा, पूरा करना है, टाइम हो गया, आपका सरकारी टाइम हो रहा है, पूरा करना है, छोड़ें। यततो है अति कौन्तेय, यततो का मतलब यतन करने वाला, सावधान। यति शब्द निकला है यततो से, यति का मतलब अब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, जतिपुरा है, जतिपुरा का मतलब यहाँ माधवेंद्र जति रहते थे, जति का मतलब यतनशील, जो संसार में कभी लिप्त नहीं होना चाहता है, यति
यतनशील यतत्व यतत्व अपी अपे कौन थे हे अर्जुन हे कुंती नंदन कोई यतन भले कितना भी करे पुरुषस के विपश्चित वो व्यक्ति कितना बड़ा वचस्पति बड़ा बुद्धिमान हो शास्त्र ज्ञ हो अच्छे तरह से शास्त्र को ठीक तरह जानता भी हो अगर कोई जल्दी जाने वाले हो तो प्रसाद भाई तैयार हो तो दे देना बगैर प्रसाद किसी को मत जाने देना हरे कृष्ण कोई जाना चाहे तो प्रसाद जरूर लेके जाए भाई क्योंकि एक टाइम रोज है उस वक्त घंटी बजती है प्रसाद की कुछ लोगों की तो उसमें भी बाधा नहीं डालनी चाहिए जैसे सुबह 9 बजे ब्रह्मचारियों की घंटी बजती है 9-10 बजेंगे ब्रह्मचारी कथा में बैठ नहीं सकेंगे उनके अंदर कंप्यूटर बोलेगा प्रसाद उनका टाइम ऐसे होता है वो बैठ नहीं सकेंगे कुछ भी हो जाए ऐसे सबके अंदर कुछ न कुछ सेट है तो हर एक अपने हिसाब से चले सबके लिए जरूर नहीं सब स्थित प्रज्ञ में नहीं हो सकते हैं सुन सकते हैं लेकिन हो नहीं सकते बहुत मुश्किल है पुरुषस विपश्चित बहुत बड़ा बुद्धिमान शास्त्र के वचस्पति जो शास्त्र के है इंद्रियाणि परमाथिनि ये इंद्रियां बहुत बलवान है हरंती प्रसभम मन और उसके मन को हरण करके लेके चली जाती है अगर उसको उत्तम रस नहीं मिला हुआ होगा और केवल प्रजाति के स्तर के ऊपर होगा और जहाति तक नहीं पहुंचा होगा तो पता नहीं कितना बड़ा विपश्चित भी हो ना ये बलवान एक इंद्री मन को उठा के लेके चली जाए एक इंद्री देखने की पतंग को आग में जलाती है एक इंद्री छूने की हाथी इतने बड़े भारी भरकम को कागज की बनी हुई हाथनी को छूने के शोक में खड्डे में गिरा देती है और बाजार के अंदर रुपये के लिए हाथी घूमता रहता है केवल एक इंद्री की वजह से हिरण के सुनने की एक इंद्री है वो बजाता है बीन और बिचारी फंस जाती है खाने की इंद्री की वजह से मछली फंस जाती है मिलता है सब जगह कांटा आता है और अटक जाता है एक एक इंद्री एक एक के पतन का कारण बनती है ऐसे कोई भी एक इंद्री कभी हमारी वश से बाहर गई तो मन को लेके चली जाएगी तो ये बड़े बड़े बुद्धिमानों की बात है विश्वामित्र जैसा ऋषि गायत्री को साक्षात करने वाला मेनका आई तो काम में लिप्त हो गया और सब ऋषियों के जीवन में ये मिलेगा ये उदाहरण देने के लिए कि इतने बड़े यति भी इंद्रियों के वेग में बह जाते हैं बड़े बड़े यति भी इंद्रियों के वेग में बह जाते हैं और फिर प्रभुपाद जी ने अम्बरीश महाराज का ये श्लोक उद्धृत किया है न यमुना आचार्य का श्लोक है इस श्लोक के तात्पर्य में यमुना आचार्य का श्लोक उद्धृत किया है कि जिसको रोज कृष्ण के नए रस का सुख मिलता है वो संसार के तुच्छ सुख को थू थू करके थूक देता है उसमें आसक्ति भी नहीं होती है लेकिन ये स्तर कब हो अब इसके बाद इसलिए एक इंद्री भी अगर आपकी बस में नहीं हुई तो मन को लेके चली जाएगी चाहे कितना बड़ा बुद्धिमान और यत्नशील न हो तब कृष्ण कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत पर वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मत परह भक्ति का वाचक है जिसने मित्र मेरा शरण लिया है मत परह मतलब मेरा शरण लिया भगवान कहते हैं इसलिए तानी सर्वाणी इसलिए सारे इंद्रियों को संयम उसको संयम में रखो इसलिए सारी इंद्रियों को संयम में रखो युक्त आसीत मत पराह मेरी सेवा में लगाकर मेरा शरण लेकर इंद्रियां काम मांगेंगी
इसलिए उनको मेरी सेवा के काम में लगाओ और मेरी शरण लो। युक्त आसीत, युक्त का मतलब सेवा में लगाओ, और मत परा का मतलब मेरी भक्ति करो, मेरे शरण। और इस युक्त आसीत के शब्द की परिभाषा प्रभुपाद जी ने भागवत के 3 श्लोकों में की है। अम्बरीश महाराज आप अपनी हर इंद्री को भगवान की सेवा में कैसे लगाते थे? आंखों से भगवान का दर्शन, नासिका से भगवान के चरणों की तुलसी को सूंघते थे, कानों से भगवान के गुणगान सुनते थे, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करते थे, भक्तों की सेवा करते थे, पांव से भगवान के तीर्थ स्थानों पे जाते थे। तो हर एक इंद्री भगवान की सेवा में लगा दो, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, मत परहा भगवान की भक्ति में युक्त हो जाओ। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में हो गई वो स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि भगवान में तृप्तिकती है जिसकी इंद्रियां वश में है। जो जित इंद्रिय है, प्रशांत मन है, ये शब्द सुधामा ब्राह्मण के लिए भागवत में आए हैं। जित इंद्रिय प्रशांत मन, मन उसका शांत है, इंद्रियों के ऊपर पूरा उसका संयम है, और भगवान और जैसे स्थिति में भगवान रहे उसमें रहने को तैयार है। अब आइए 62, अब ये 62-63 ये 2 श्लोक ये संसार में पतन का कारण है। आदमी का पतन कैसे होता है? पतन की सीढ़ी जिसमें से आदमी, जैसे बच्चे ऊपर चढ़ के और फिर फिसलने से नीचे आता है ना, ये कोई ऊपर चढ़ भी जाए ज्ञान की सीढ़ी से तो कैसे नीचे फिसल के वापस धरती पे आता है, पतन कैसे होता है, वो 2 श्लोक है। ध्यायतो विश्यान पुंश संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधाद भवति संमोह संमोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये नीचे गिरने का कैसे आदमी का पतन होता है? ध्यायतो भी एक फोटो है भगवत गीता में दिया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो फोटो ध्यायतो विज्ञान। जब आदमी केवल इंद्रिय के विषय का ध्यान करता है, किसी को मुझे ये चीज चाहिए, उसका सिर्फ आंख से शोकेस में रखी हुई चीज के ऊपर आंख पड़ गई और आंख उसमें अटक गई ना, तो फिर उसमें आसक्ति हो गई, वो चीज मेरे को चाहिए, और वो चीज अगर नहीं मिली तो क्रोध आएगा, और क्रोध आ गया तो सब रिश्ते नाते भूल जाएगा। फिर उसको क्रोधात भवती संगमोह, संगमोहात स्मृति विभ्रम, उसको कुछ याद नहीं रहेगा मेरी माँ है कि मेरा बाप है, उसको वो चीज ही दिखाई देगी। और बुद्धि ना, फिर क्या होगा, समोह क्या है इसके बाद, स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसाल बुद्धि नाचो। अरे भाई, जो माता बाप पिता से लड़ने लग जाए कोई चीज सुच लेने के लिए, तो उसकी स्मृति तो खत्म हो गई, तो उसकी बुद्धि नाश हो जाती है, विपरीत बुद्धि हो जाती है, विनाश हो जाता है, प्रणश्यति उसका पतन हो जाता है। तो एक चीज में केवल इंद्रिय अटक गई तो फिर ये पतन का कारण शुरू हो जाएगा। ध्यायतो, केवल उसका आपने विचार भी किया, कंटेम्प्लेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस अटैचमेंट डेवलप्स, देखने से सिर्फ, तो आंख से विषयों में आसक्ति होती है, उसको प्राप्त करने का। किसकी घंटी बज रही है? टाइम हो गया, सबकी घंटी बजेगी अब। तो ये पतन का कारण है, और फिर राग द्वेष व मुक्तेष्टो विमुक्तेष्टो विषयान इंद्रियश्चरन आत
आत्मविश्वे विद्यात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तेश, जिसने विशेष रूप से आसक्ति से और द्वेष से अपने आप को मुक्त कर लिया है, किसी चीज में आसक्ति नहीं है और न मिलने के कारण किसी से द्वेष नहीं करता है, जो ऐसा हो गया है, विषयाम इंद्रिय, उसकी इंद्रियां भले विषयों में विचरण करें, इसका अर्थ ये है। आप आज घर से यहां तक आए, कितनी गाड़ियां देखी, हजारों गाड़ियां देखी, हजारों आदमी देखे, तो आपकी आंख बंद करके तो नहीं आए ना, कान भी बंद करके नहीं आए ना, तो आपने देखा बहुत, सुना बहुत, लेकिन आपके मन में कुछ देखी हुई चीज भी नहीं है, सुनी हुई भी चीज नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको किसी में ना आसक्ति थी ना द्वेष था। अगर आते हुए आपने आपके किसी दुश्मन को देख लिया होता तो लाखों में से वो आपके दिमाग में चपक जाता, ये बदमाश यहां देखा था मैंने। और आपने अपने लड़के को वहां देखा होता और वो सिगरेट पीता होगा तो आपको चपक जाता है, मेरा बच्चा यहां खड़ा था, आपकी आसक्ति हो जाती। तो देखने में मना नहीं है, सुनने की मना नहीं है, उसमें चपकना नहीं है। आंखें खुली चलते हैं, हजारों गाड़ियां देखते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी देखोगे तो परेशानी होगी, अपना कोई जानकार देखोगे तो परेशानी होगी। तो आसक्ति नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, इंद्रियों को विषयों में जाने दो। आखिर आंख तो देखने का काम बंद नहीं करेगी, कान सुनने का काम बंद नहीं करेगा, उसमें अटैचमेंट मत करो, उसको पकड़ो मत, अंदर चपकने मत दो, बस चपकने में परेशानी है। आत्मविश्य विद्यात्मा, आत्मविश्य विद्यात्मा, विधि, विधि का मतलब जो जो नियम शास्त्र में है, जो जीवन में, जिस नियम शास्त्र में ये है कि पर स्त्री मात समान, ये नियम शास्त्र का, ये शास्त्र का नियम है, पर स्त्री मात समान, पर धन पत्थर समान, ये नियम है ना। अगर ये नियम आप जीवन में पालन कर लोगे तो फिर आपको भगवान की कृपा प्राप्त, प्रसादम अति गच्छते, प्रसाद मतलब कृपा। तो आप जीवन में जो नियम है उसको पालन करो, पर स्त्री मात समान, पर धन पत्थर समान, ये नियम है, इसको अगर पालन करोगे तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, फिर आपको किसी में आसक्ति और द्वेष नहीं होगा। क्योंकि आसक्ति द्वेष तब होता है जब अपनी चीज कुछ मानते हो, तो मर्यादा में जीवन में रहोगे, रेगुलेटेड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। तो भगवान की कृपा कब होती है? जब हम मुक्ति के मार्ग के ऊपर चलते हैं, शास्त्रों के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं, तो फिर हमारा, हमारे को कृपा, जब कृपा मिलेगी तब क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखानां हानिर अस्य उपजायते परसं चेतनो ह्यासो बुद्धि परितिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां, ये जो भगवान की कृपा होगी ना, उसके सारे दुख नाश हो जाएंगे। प्रसादे सर्व दुखानां, वो भगवान की कृपा उसके दुख नाश कर देगी, और हानिर अस्य उपजायते, उसकी कोई हानि नहीं कर सकता है। अस्य ऐसे व्यक्ति की जो आत्मविद्यात्मा है, जो जो नियम पालन करता है जीवन में, जो भी मॉरल कोड फॉलो करता है, डिवोशनल सर्विस के रूल फॉलो करता है, जो नियमों के अंतर्गत रहता है, उसको हानि, उसकी हानि नहीं होती है। हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेत सोया, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाएगा, उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, क्योंकि दुख चला जाएगा तो प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, मतलब बहुत तुरंत, और बुद्धि परिवर्तिष्ठति, उसकी बुद्धि फिर पर तत्व में, देखो अभी तक क्या कह रहे थे, स्थित प्रज्ञ, और अब क्या कह रहे हैं, बुद्धि पर्य अवस्थित, पर तत्व में अवस्थित होगी। पर मतलब ट्रांसेंडेंट, मतलब भगवान में बुद्धि स्थित उसकी हो जाएगी जिसके ऊपर कृपा हुई। अब कृपा कब होगी? जब मद पर मत परा होंगे। मत पर का अर्थ भक्ति। जब भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा होगी, और भगवान की कृपा जब होगी तब आपकी बुद्धि भगवान को ग्रहण करेगी। अब एक नेगेटिव श्लोक है, नास्त्र बुद्धिरा युक्तस्या न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यंतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, अयुक्तस्य, युक्तस्य मतलब जुड़ी हुई, और अयुक्तस्य मतलब जिसकी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी है, न चायुक्तस्य भावना, उसकी भगवान में भावना कैसे हो सकेगी? वो कृष्ण भावना भावित हो नहीं सकता है। जब उसकी भावना नहीं है, न चा भाव्यंत शांति, तो फिर उसको शांति कहाँ से मिलेगी? ऊपर का है प्रसन्न कौन होगा? शांति किसको मिलेगी? जिसको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद किसको मिलेगा? जो भगवान की भक्ति में लगेगा, भगवान की सेवा में लगेगा। इसकी बुद्धि भगवान की सेवा में लगी नहीं है, इसकी बुद्धि तो इंद्रियों के भोग में लगी हुई है, इसलिए इसकी बुद्धि में भगवत भावना नहीं आ सकती, इसलिए इसको शांति, और इसको शांति नहीं मिलेगी तो जो शांति नहीं है उसको सुख कहाँ से मिलेगा? अशांत से कुत सुखम। इंद्रियाणि ही चरताम यन मनो अनुर्विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम्बसि। कभी कभी तेज हवा होती है ना, तो हवा वो नाव को कहीं लेके चली जाती है अपने स्थान से और किसी जगह पे। नाव, नाव पानी में होनी चाहिए, पानी नाव में नहीं आना चाहिए, पानी नाव में आएगा तो डूब जाएगी। नाव पानी में होनी चाहिए, आगे जा सकती है, लेकिन कहीं तूफान आ जाएगा तो नाव चलाने वाला उसको लंगर में बांध के रखेगा, नहीं तो वो कहीं चली जाएगी। ऐसे अगर इंद्रियां ही चरताम, चरताम का मतलब इंद्री किसी एक ने तूफान की तरह वेग कर लिया, तो यन मनो अनविद्यते, तो उसके मन को एक इंद्री उस मन को ऐसे उठा के तूफान की तरह ले जाएगी, तदस्य हरती प्रज्ञान, और फिर वो मन उसकी स्थित बुद्धि को भी वहां से उखाड़ के लेके चला जाएगा, जैसे नाव को तूफान लेके जाता है। तो ये सावधानी का श्लोक है, एज ए स्ट्रांग विंड स्वीप अवे ए बोर्ड ऑन दी वॉचर्स इवन वन ऑफ दी रोमिंग सेंसेस इंद्रियाणि चरतम, चरतम मतलब रोमिंग, जो बाहर घूमती है, ऑन विच दी माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे मैंस इंटेलिजेंस। इंद्रियां के मन, मन से बुद्धि। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कभी लिखते हैं, मन कभी मतवाला हाथी की तरह हो जाता है तो मानो लोहे जैसा सख्त हो जाए, तो बुद्धि सुई जैसी तेज है, लोहे में सोराख तो नहीं कर सकती है ना। तो कभी कभी मन बहुत स्ट्रांग होता है और बुद्धि की बात नहीं सुनता है। होना चाहिए मन को बुद्धि के अंडर में, लेकिन उल्टा हो जाता है। और उधर उदाहरण देते हैं, कभी बीमारी बढ़ जाती है तो दवाई उसको, जो दवाई नॉर्मल बीमारी को ठीक करती है वो नहीं करने लगती है। दवाई खाओ तब भी ठीक नहीं होता है, तब क्या करना चाहिए? पूरा अस्पताल में दाखिल होना चाहिए, डॉक्टर से अच्छी तरह से टाइम से दवाई और खाने को ठीक करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को स्थित प्रज्ञ होने के लिए गुरु के आश्रय लेकर और भक्तों के संग में रहकर संयम में रह के और आस्ते 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 बुद्धि को बलवान करना पड़ेगा, आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, और मन को आस्ते आस्ते नियंत्रण में करना पड़ेगा। जैसे अस्पताल में जाने से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। ऐसे गुरु के शरण में जाने से, टाइम से जप करने से, नियम का पालन करने से मन को आस्ते आस्ते शांत कर सकते हैं। अब कितने श्लोक बच गए? तस्माद् यस्य महाबाहो निघ्नैतानि सर्वथा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महे महाबाहो, अर्जुन तुम तो महाबाहो हो, इतनी बड़ी तेरी भुजाएं हैं, तो शत्रु के ऊपर अगर विजय प्राप्त कर सकता है तो ये इंद्रियों के ऊपर भी तो विजय प्राप्त कर लो ना। हे महाबाहु, इसलिए सारी इंद्रियों को निग्रहितानि सर्वथा, इन सारियों को निग्रह करके अपने बस में कर लो। जिसने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोक लिया उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और फिर ऐसा व्यक्ति, अब दुनिया वाला व्यक्ति और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में कितना अंतर है, ये श्लोक है। यानि च सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संसारी लोगों के लिए जो दिन होती है, साधु के लिए वो रात होती है। जो साधु के लिए, जो संसारी लोगों के लिए रात होती है, साधु के लिए दिन होता है। इसका अर्थ सिंपल ये है कि दोनों के अंदर दिन और रात का अंतर है। एक भगवान की सेवा में खुश होता है, एक इंद्रियों की सेवा में खुश होता है। इतना अंतर है दोनों में। जिसकी बुद्धि स्थिर है उसमें, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसमें इतना बड़ा अंतर है। तो एक के लिए दिन है और दूसरे के लिए रात है। अब जिसकी बुद्धि स्थिर है वो कैसा है? आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठां समुद्रमापप्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामान् यं प्रवशन्ति सर्वे शशान्तिमापनोति न काम कामी। समुद्र की तरह कितनी भी बरसात पड़े, कितनी भी नदियां आए, समुद्र अपने किनारे से बाहर नहीं जाता। ऐसे जो शांत है, जो शांत है, शांत कौन है? जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, जिसकी कृष्ण भावना है, वो शांत है। उसमें कितनी भी कामना आएंगी तो समुद्र की तरह वो किनारे से बाहर नहीं, मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे कामी कोई होगा तो वो उछलना कूदना शुरू कर देगा। इसलिए स्थित प्रज्ञ समुद्र की तरह गहरा होता है, उसके उसकी गहराई में मोती होते हैं। वो शास्त्रों को इतना ठीक तरह से हृदय में बिठा देता है कि उसको संसारी कामनाएं विचलित नहीं कर सकती हैं। अब विहाय कामान यह सर्वान चरती निर्ममो निरहंकार शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान सर्व, जितनी कामना है उसको उसने त्याग दी है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की कामना को, बड़ी कामना को जीवन में रख दिया है, बुद्धि को भगवान में लगाया है, तुच्छ कामनाओं को त्याग दिया है। इस दुनिया में घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। निष्प्रह, किसी चीज की इच्छा स्प्रह नहीं है, ये मुझे मिले ये नहीं, खाएगा पिएगा चलेगा घूमेगा सब काम करेगा, लेकिन किसी में किसी की स्प्रह नहीं है। निर्ममो, किसी को अपना नहीं मानता है कि मेरा है, ममता नहीं है, अपनापन किसी में नहीं पकड़ता। निर्ममो न ममा, ये मेरा नहीं है, भगवान का है। निरहंकार, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, ये अहंकार भी नहीं है। अहंकार कब आता है? कुछ मिलता है तब। तो अहंकार भी नहीं है, ऐसे आदमी को शांति मिलती है। कितने टाइम में शांति मिल सकती है? तब कहते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति पारथ नैनम प्राप्य विमोहयति स्थित्वास्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ऐसी ब्राह्मी स्थिति, इसका मतलब अब वो ब्रह्मभूत स्तर के ऊपर पहुंच गया है। जब आदमी एक बार ब्रह्मभूत स्तर के ऊपर पहुंच जाता है, नए नाम प्राप्त विमोहयति, फिर वो संसार के किसी चीज में मोहित नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर लेता है। साथ या अंत का, अंत का मतलब अंत काल में भी, लास्ट एक आधे दो घंटे में भी उसको कोई अच्छा संत मिल जाए और भगवान का नाम उसके कान में जोर से कह दे, और इतना जोर से कहे कि उसके कान के फर्दे पड़ जाए, उसके बाद और कुछ भी नहीं सुने, इसका अर्थ ये हुआ कि फिर और कुछ नहीं सुने तो समझ लो उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण का अर्थ है न, वाण का मतलब बाण, जिसको दुख नहीं मिलेगा, उस ब्रह्म की स्थिति में पहुंचेगा जहां उसके पास ये दुख कुछ भी नहीं है। और फिर इसके लिए प्रभुपाद ने खटवांग महाराज का उदाहरण लिखा है, यहां दूसरे अध्याय को पूर्णाहुति से पहुंचाया आपकी